देखो ये हम समय सार पढ़ रहे हैं और इस समय सार की जो हम पृष्ठ क्रमांक 40 पर आए हैं, यहाँ तो हमने देखा है कि यह जो आत्मा यानी सिद्ध परमात्मा जो है उसकी कुंद आचार्य कहते हैं कि अपने में और पर आत्माओं में उसकी स्थापना करके वो बात बताना चाहते हैं। 40 नंबर पृष्ठ पर हम आए हैं, नीचे से दूसरा पैराग्राफ है। आत्मा तो निश्चय थी परमात्मा स्वरूपे विराजमान नित्य ध्रुव पोते छे। तेने आचार्य भगवाने छठी गाथा मां न्यायक कहो अने अग्यारमी गाथा मां भूतार्थ कहो। भूतार्थ का अर्थ है पना जो है, विद्यमानता जिसकी है, भूत यानी है पना। तो भूतार्थ यानी जो स्वयं है, विद्यमान है, तो न्यायक यानी ये जिसका न्यायक नाम है उसी को आगे भूतार्थ कहा गया है। भूतार्थ ने जाने छे पर्याय यानी त्रिकाली द्रव्य को जानती है एक समय की पर्याय, पन ए पर्याय द्रव्यमान थी। द्रव्यमान थी इतले जो द्रव्य का आश्रय लेना है वह आश्रय भूत ऐसा जो द्रव्य है, वह द्रव्य दृष्टि का जो विषय है, सम्यक दर्शन का विषय ऐसा जो आत्मा है उसमें पर्याय नहीं है। पर्याय नहीं यानी कोई विशिष्ट पर्टिकुलर एकाद पर्याय नहीं है। त्रिकाली पर्यायों का प्रवाह जो है वो तो है उसमें, क्योंकि अनंत गुण और अनंत पर्यायों का मिलकर ही द्रव्य होता है। क्योंकि हमें जिसका आश्रय लेना है वह तो त्रिकाली है और पर्याय तो एक समय की है, तो वह एक समय रूपी जो पर्याय है वो उसमें रहेगी नहीं।
तो हम पर्याय नहीं करते हैं ना, तो जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं उस दृष्टि में वो पर्याय नहीं है। जैसे सोने के बहुत गहने हैं और उसमें हम सोने की अपेक्षा उसमें देखते हैं, तो हम जब सोना इस दृष्टि से देखते हैं तो उसके आकार वगैरह सब गौर हो जाते हैं, सोनारे के पीछे उसकी चर्चा हम नहीं करते, कितना सोना है वो देखते हैं। वैसे यहाँ पर्याय नहीं करते क्या है, पर्याय गौण करके हमारी वो नजर में नहीं आती, उसकी चर्चा भी नहीं, क्योंकि हम ध्रुव द्रव्य की दृष्टि है उसको देखते हैं।
देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भूतार्थ ने जाने छे पर्याय, पन ए पर्याय द्रव्यमान थी। आगे कह रहे हैं पर्याय पर्याय नहीं छे। अभी तक क्या देखा था हमने, जो प्रवचन सार में हमने ये देखा था कि अन्य द्रव्य से यह द्रव्य भिन्न है, तो द्रव्य की गुण और पर्याय तीनों एक जगह लिया और बाकी अन्य विश्व के सारे पदार्थों को अलग लिया। अभी वहां से हम जब अपने स्वयं के द्रव्य तक आए हैं, अभी लिमिटेशन हमारे द्रव्य में है, तो यहाँ द्रव्य जुदा है, गुण जुदा है और पर्याय जुदी है। यहाँ द्रव्य है वह गुण नहीं है, द्रव्य है वह पर्याय नहीं है, इस अपेक्षा से यहाँ बात करेंगे। अभी कहते हैं पर्याय पर्याय नी छे, पर्याय ने द्रव्य नी केवी ए तो परती भिन्न पाड़वा माटे छे। ख्याल में आई बात। अब कहते हैं उत्पाद वे ध्रुव त्रणे सत छे, पर्याय कोनी छे एम भेद पाड़ी ने समझावु होय त्यारे द्रव्य नी केवाय। निरपेक्षती केवू होय एटले अपेक्षा विना केवू होय तो पर्याय पर्यायनी छे अने द्रव्य द्रव्यनु छे। ये क्या बताना चाहते हैं? ये हमारा राजेश है ना, वो अमेरिका गया, गए थे ना, अमेरिका नहीं गया, अच्छा गया था, हम भेज देते। तो वहां उसको पूछा आप कहाँ रहते हो, तो बोला मैं इंडिया में रहता हूँ। वो तो पूछने वाला तो खुश हो गया, हा? अच्छा सब इंडिया तुम्हारा है, तुम पूरे इंडिया में? अरे नहीं भाई, ये इंडिया तो मेरा है, मतलब ये है कि मैं तो रहता हूँ बम्बई में, लेकिन बम्बई इंडिया में आती है इसलिए मैं इंडिया में रहता हूँ। अच्छा तो पूरा बम्बई आपका है क्या, आप पागल हो गए क्या, मैं तो माहिम में रहता हूँ। अच्छा माहिम तुम्हारा है? नहीं नहीं, वो डाया भाई निवास नाम की जो बिल्डिंग है उसमें रहता हूँ। तो पूरा डाया भाई जो? नहीं, वो चार नंबर रूम में रहता हूँ, या फ्लैट नंबर 4। तो कितना रूम है हमारे पास? 10 रूम है। तो 10 रूम में तुम रहते हो? नहीं, उसमें से एक रूम में रहता हूँ। तो पूरे रूम में? नहीं नहीं, ये जो बेड है ये मेरा है, ये मेरे मिसेज का, ये मेरे बच्चों का, ये बेड जितना मैं रहता हूँ बस। तो क्या किया हमने, सबको अलग करते 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 यहां तक आए। अब यहां कहते हैं कि ये पर्याय किसकी है, तो पर्याय किसकी है ये बताने के लिए पहले तो हमने सारे द्रव्यों को, उनके गुणों को, इनके पर्याय को हटा दिया। ये हिंदुस्तान, बम्बई, माहिम आदि सब हटा दिया। फिर उसमें से आए खाली अपने घर में, और घर में आने के बाद फिर ये रूम मेरे पिता का है, ये मेरे माता का है, ये मेरे भाई का है, ये मेरा टिकने का, ऐसा करके हम अपने तरफ आए। वैसे यहां द्रव्य जुदा है और पर्याय जुदी है ऐसा कह रहे, क्योंकि अगर यहां ये बताना चाहते हैं कि द्रव्य से पर्याय होती होगी, द्रव्य के कारण अगर पर्याय परिणमित होगी, तो द्रव्य तो त्रिकाली शुद्ध है, तो पर्याय भी शुद्ध आनी चाहिए। तो कहते हैं इस अपेक्षा से यहां तीनों को जुदा जुदा दिखाने का है द्रव्य। अभी यहां तो द्रव्य और पर्याय को जुदा दिखाना है, तो कहते हैं पर्याय पर्याय की है, क्योंकि द्रव्य तो त्रिकाली शुद्ध है, पर्याय में अशुद्धता क्यों? तो कहते हैं पर्याय का परिणमन पर्याय से हो रहा है, पर्याय पर्याय की है। तो यहाँ क्या आचार्य नहीं जानते होंगे कि भाई वो खाली जीव द्रव्य के पर्याय है, लेकिन यहाँ तो हमें त्रिकाली जो द्रव्य है, वो त्रिकाली द्रव्य तो हमेशा त्रिकाल शुद्ध ही रहेगा। ख्याल में है? तो इसलिए उस पर्याय भी उस त्रिकाली द्रव्य से नहीं निकलती, द्रव्य जुदा है और पर्याय जुदी है, यह बात यहां बताना चाहते। देखो फिर से तीसरी लाइन, पर्याय ने, पर्याय पर्याय नीचे मिला ना उसके आगे लास्ट वर्ड, पर्याय ने द्रव्य नी केवी ए तो परती भिन्न पाड़वा माटे छे। अभी कहते हैं उत्पाद वे ध्रुव त्रणे सच्छे, सच्छे यानी तीनों है। क्या ध्रुवता भी है, समय समय के उत्पाद भी है, और समय समय में व्यय भी है, व्यय भी है कह रहे, तीनों ही सत का अर्थ क्या, जिसमें है बना है, यानी जिसकी विद्यमानता है, ऐसे तीनों है, और ऐसा तीनों सत मिलकर एक द्रव्य का लक्षण कहा गया। तो क्या कहते हैं ध्रुव उत्पाद वे ने ध्रुव त्रणे सत छे, पर्याय कोणी छे एम भेद पाड़ी ने समझावु होय त्यारे द्रव्य नी केवाय। निरपेक्ष थी, अपेक्षा द्रव्य नी लगावी ने, हवे निरपेक्ष थी કેવું હોય તો પર્યાય પર્યાયની છે અને દ્રવ્ય દ્રવ્યનું છે. ઉસકો જુદા ક્યા એ અધિક સે અધિક ઉસકા મતલબ ક્યાં બોલતે પાર્ટીશન કરતે 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 અભી યહાં તક આયે કે પર્યાય તો ઉત્પન્ન હોતી દિખાઈ દે રહી હે તો પર્યાય કા કરતા કોણ તો કહેતે દ્રવ્ય નહીં ગુણ નહીં પર્યાય કા કરતા પર્યાય સ્વયં હૈ અભી એ બાત આગે આયેગી ઇસલિયે યહીં થોડા સા હમને આપકો ઉસકા નમૂના દિખાયા. આ ગ્રંથમાં અભિધેય સંબંધ પ્રયોજન પ્રકટ જ છે. એ તો સારી બાતે હો ગઈ પહેલે. શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ ફિર ભી બતા રહે શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ તે અભિધેય છે એ પ્રકટ છે. અભિધેય અને જો ધ્યેય રૂપ જો હૈ વો તો મેરા સ્વયં કા શુદ્ધાત્મા હૈ વહી મુજે ધ્યેય સ્વરૂપ હૈ તો એ આ ગ્રંથમાં અભિધેય છે. ધ્યેય ક્યાં હૈ તો અપને સ્વભાવ કો જાન કર ઉસી મેં એકાગ્રતા કરના યહી મેરા ધ્યેય હૈ. ક્યા કહે શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ તે અભિધેય છે એ પ્રકટ છે ગુપ્ત નથી. એ તો વાત બતાવી ગઈ હૈ. ભગવાન નિત્યાનંદ પ્રભુ વાચ્ય છે ને શબ્દો વાચક છે. યા વાચક યાને જો શબ્દ બતા રહે કિસકો બતા રહે તો યહ જો અપના શુદ્ધ આત્મા હૈ ઉસકા યહાં કૈસા વર્ણન કિયા હૈ ભગવાન આત્મા કો ભગવાન કહા કિસકે આત્મા કો હા અરે વહાં આચાર્ય તો આપને ભગવાન આત્મા કો ભગવાન કહે રહે તુમ્હારે આત્મા કો કાહે કહેંગે યહાં તો હમ પઢ રહે તો હમકો અપને ભગવાન કી બાત લેની હૈ. અભી યહાં તો યે શુદ્ધ સ્વભાવ જો હૈ ઉસ સ્વભાવ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા કો કહા હૈ. પર્યાય કી અપેક્ષા સે ભગવાનત્વ નહીં દે રહે હમે. જો સ્વભાવ મેં જો ભગવાનપના હૈ પ્રભુ હૈ ને પ્રભુ વિભુ એસી એક ને અનેક કુંડ મેં શક્તિ હૈ ઈશ્વર નામ કી શક્તિ. ક્યા કહે રહે સ્વામી મતલબ સ્વામી હૈ વહ જીવ તો સ્વામી યાને એક અપેક્ષા સે તો એસા બતા દે કે અનાથ હૈ ઓર એક અપેક્ષા સે કહેતી કે પ્રભુત્વ નામ કી શક્તિ હૈ યાને પ્રભુત્વ યાને ઉસસે ઓર બઢકર કોઈ નહીં હૈ ઓર એક જગહ કહેતે અનાથ હૈ. અનાથ કા અર્થ ભી યહી હૈ કે જિસકા નાથ યાને જિસકા માસ્ટર યાને ગવર્નર યાને જિસકા કોઈ ઉસસે બઢિયા કોઈ નહીં હૈ એસા નાથ નહીં હૈ વહ અનાથ હૈ. તો એ પ્રભુ કહો વિભુત્વ શક્તિ કહો પ્રભુત્વ શક્તિ કહો ઈશ્વરત્વ શક્તિ કહો એ સારા ક્યાં બતાતા હૈ કે પ્રત્યેક હમને દેખા થા ના કોણ સે જો હમ અનુત્તર ઓર અનુદિશ મેં દેખે થે ના અહમ ઇન્દ્ર યાને પ્રત્યેક જીવ વહા ઇન્દ્ર હૈ અહમ ઇન્દ્ર હૈ ઉસસે કોઈ માસ્ટર નહીં ઉસકા વૈસે યહાં પ્રત્યેક આત્મા અહમ ઇન્દ્ર હૈ પ્રત્યેક આત્મા પ્રભુત્વ શક્તિ સહિત હૈ વો સ્વભાવ કી બાત કર રહે તો યહાં કહે રહે હૈ કે યહ જો ભગવાન નિત્ય આનંદ પ્રભુ યાને યે કૈસા હૈ સ્વભાવ તો કહેતે સદોદિત નિત્ય આનંદમય હૈ ઓર પ્રભુત્વ શક્તિ સે સહિત હૈ યહ તો ઉસકા વાચ હૈ યાને ઇસકો બતા રહે કહાં કિસસે યે જો શબ્દ બ્રહ્મ હૈ યે શબ્દ જો બતા રહે વો વાચક હૈ યે વાચ શબ્દોં કે માધ્યમ સે ત્રિકાલી નિત્યાનંદ પ્રભુ આત્મા કો બતા રહે હૈ. સમયસાર શાસ્ત્ર વાચક છે એનું વાચ જે શુદ્ધાત્મા તેને શબ્દો બતાવે છે. અબ યહાં ઓર અબ ઓર આસાન સમજાતે હૈ જેમ સાકર પદાર્થ વાચ છે અને સાકર શબ્દ વાચક છે. વાચક વાચ્યનો અર્થ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. યાની યહાં હમ સાકર કહેતે હૈ તો હમે વો મીઠી મીઠી સાકર યાદ આતી હૈ તો વહ ઉસકા યે કહેને સે વો યાદ આતી હૈ તો દોનો મેં નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ હૈ. ભગવાન આત્મા ધ્રુવ વાચ્ય છે કેવાલાયક છે અને સમયસારના શબ્દો વાચક છે. એ બાત સમજતી સમજમાં આતી હૈ ને નહીં સમજ મેં આવે તો પૂછના હો. બીજી રીતે કહીએ તો વાચક શબ્દો વડે કહેલો જે આત્મા તેનું જ્ઞાન જેને થાય તે જ્ઞાનની પર્યાય અભિધેયને જાણે છે. અભિધેયને એટલે જો ધ્યેય સ્વરૂપ એસા જો ત્રિકાલી શુદ્ધ આત્મા હૈ ઉસકો જાણે છે. શ્રુત જેમ અભેદ ધ્યેયને બતાવે છે. શ્રુત યાને આગમ શાસ્ત્ર જેમ અભેદ ધ્યેય ને બતાવે છે એમ જ્ઞાન ની પર્યાય છે એ અભેદ અભિધેય ને જાણે છે. આ તો ભગવાન નો અલૌકિક માર્ગ છે ભાઈ. સમયસાર કળજ 200 માં આવશે આવે છે કે પરદ્રવ્ય અને આત્માને કાંઈ પણ સંબંધ નથી, તો કરતા કર્મ સંબંધ કઈ રીતે હોય? ક્યા કહેના ચાહતે? દેખો યે થોડા સા સમજ કર હમ આગે બઢેંગે. પ્રતિભા યહાં ક્યા સમજા રહે હૈ? જો પરદ્રવ્ય હૈ તો પરદ્રવ્ય મેં હમ કિસકો કિસકો લેંગે પહેલે યે તો નક્કી કરેંગે ના? પરદ્રવ્ય મેં કિસકો કિસકો લેંગે? ક્યા બતાયા? પરદ્રવ્ય અને આત્મા. આત્મા કહેતે હંમેશા મેં એસા લેના, ક્યુકિ અંગ્રેજી મેં હમ કહેતે ના આઈ ઇઝ ઓલવેઝ કેપિટલ. હા, કભી આ એસા નહીં લિખતે, તો મેં આત્મા તો મેં એસા લેના. તો વૈસા કહેતે પરદ્રવ્ય અને આત્મા એ બંનેમાં કાંઈ પણ સંબંધ નથી. તો એ પરદ્રવ્ય જો લિખાય ઉસમે કિસકો કિસકો લેના? હા, જોર સે. હા, રાગ દ્વેષ કો નહીં લેના, બહુ અચ્છા. હા, શરીર સંયોગી પદાર્થો કો હટા દેના, બહુ અચ્છા. ઓર અચ્છા, ઓર હેતલ તુમ બતાના ચાહેગી? બહુ બઢિયા. ઓર બહુ ડિટેલ બોલના, વો તો એ આપકો હીરા ખરીદને ને વિશ્વ મે મિલેગા, એ એસી બાત નહીં ચલી. આપકા સહી ઉત્તર હૈ, થોડા ડિટેલ દેના. કોણ કોણ સબ દ્રવ્ય મેં કોણ આતા હમકો ક્યા માલુમ? હમ તો આપસે પૂછ રહે, જાનના ચાહતે. હા, યે મૂળ વાત હૈ. દેખો ઇસને જો બતાયા હૈ મેં આત્મા કહેતા હું, તો આપ ભી તો આત્મા હો કે નહીં? લેકિન મેરે લીએ પરદ્રવ્ય હો, તો બાકી પૂતગલ ધર્મ અધર્મ આકાશકાલ તો પરદ્રવ્ય હૈ, ઉસમે કોણ સી બડી વાત હૈ? તો ઉસમે ક્યા જાનને કા હૈ? જરા સબૂર કરો, બતા રહા હું. દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભી પર હૈ ક્યા? ખ્યાલ મેં આયા? દેખો જબ કહે રહે ના, અરે અનંત સિદ્ધ ભી પર હૈ હમારે લીએ, તો યહાં ક્યા કહે રહે? દેખો દેખો કે યે સમજા રહે હૈ. કહાં ગયા? હા, ઇધર હૈ ક્યા? ઇધર. અચ્છા 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 અચ્છા. યે સમજા રહે પરદ્રવ્ય અને આત્માને કાંઈ પણ સંબંધ નથી. યે મેં ક્યું ઇતના ટાઈમ લે રહા હું ઇસકો, તો આપકો સમજાને કે લીએ. તો પરદ્રવ્ય મેં કહેતે યે કલશ 200 મેં આને વાલા હૈ સબ, લેકિન યહાં કહે રહે કે મેં છોડકર અનંત જીવ દ્રવ્ય. તો અનંત જીવ દ્રવ્ય મેં આત્મા, બાકી પંચ પરમેશ્વર આય કે નહીં? વહ ભી મેરે લીએ પરદ્રવ્ય હૈ, ઓર બાકી પુદગલ ધર્મ અધર્મ આકાશકાલ સારે વો ભી પરદ્રવ્ય હૈ. તો યે આત્માને કાંઈ પણ સંબંધ નથી, યાને ઇનકા એક દૂસરે સે કુછ ભી સંબંધ નહીં. ક્યું સાહેબ આપકે પાસ ક્યા સબૂત હૈ કે મેરી અસ્થિ મેરે મેં હૈ, મેરી પરમે નાસ્તિ હૈ? મેરે મેં ઓર અન્ય પુદગલ દ્રવ્ય મેં, ધર્મ દ્રવ્ય મેં ઓર અન્ય સબ જીવ દ્રવ્યો મેં કોણ સા અભાવ હૈ? જાનતી આપ અભાવ કોણ સા હૈ? હા બોલો બોલો બોલો. સોચો, મેં સમજ ગયા તું. હા, અત્યંત અભાવ હૈ. હા, બહુ અચ્છા, આપને યાદ રખા, લેકિન યાદ મતલબ બોલને મેં નહીં આયા, ક્યુકિ વો જાનતી મેં ભાષા વર્ગના કા કાર્ય નહીં કર સકતી હું, વો મેરે સે તદ્દન ભિન્ન દ્રવ્ય હૈ એસા, ઇસલિએ આપ નહીં બોલ રહે ને? બહુ અચ્છા, અત્યંત અભાવ હૈ. અત્યંત અભાવ યાને દોનો કા સ્વચતુષ્ટ ભિન્ન હૈ. અબ યહાં ક્યા સમજા રહે? ક્યું ઇતની વાત આપ લંબા રહે હો? તો યે સમજા રહે કે પરદ્રવ્ય અને આત્માને કાંઈ સંબંધ નથી. તો અભી મૂળ વાતો યહાં સે ચાલુ હોગી. કરતા કર્મ સંબંધ કઈ રીતે હોય? યાને મેં કિસી પર્યાય કા કરતા ઓર વહ પર્યાય મેરા કાર્ય. હા, પરદ્રવ્ય મેરા કાર્ય. ક્યા કહેતે હૈ? હંમેશા એક બાત યાદ રખના, કરતા કર્મ સંબંધ પ્રત્યેક દ્રવ્ય કા અપને પર્યાય કે સાથ હી હોગા. જબ અનંત પરદ્રવ્ય મેરે સે ભિન્ન હૈ, તો મેં પરદ્રવ્ય કા કાર્ય કર સકતા હું, यह मान्यता तो तद्दन मिथ्या मान्यता है, तद्दन झूठी मान्यता है। माता ऐसी समझती है कि मैं मेरे बालकों का पालन पोषण करती हूँ, बच्चे समझते हैं कि हम हमारे वृद्ध माता पिता की देखभाल करते हैं। आजकल के नहीं बोलते, अच्छा हम तो यूनिवर्सल की बात करते हैं। बहन कहती आजकल के बच्चे ऐसा नहीं कहते, वो जिनवानी को समझते हैं क्या? प्रत्येक पुरुष ऐसा समझता है कि मैं पैसा कमाता हूं ना? ये क्या है, मैं पैसे का कार्य करता हूं, पैसे को लाना, जेब में रखना, बैंक में डालना, शेयर में लगाना और पैसा का कमाई करना। ये प्रत्येक पुरुष ऐसा मानता है कि मैं परद्रव्य का कार्य कर सकता हूं। ये कर्ता कर्म संबंध मानता है। है क्या कि ज्ञाता के ये संबंध है, ये सारे विश्व के जो पदार्थ है वो मेरे ज्ञान के ज्ञेय है और मैं उनका ज्ञाता हूं, यह भूलकर परद्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध मानता है। ख्याल में आया? भूल कितनी सी? हाँ प्रभाविंद, भूल कितनी सी? इतनी सी। उसकी सजा कितनी? घूमो कितने 84 लाख योनि में, चार गति में। भूल इतनी इतनी नहीं, ये तो बहुत बड़ी भूल है। यही मूल मान्यता जो है हमारी कि मैं परद्रव्य का परिणमन कर सकता हूं, ख्याल में आया? यही सारी गड़बड़ी है। इसलिए यहां ऊपर क्या बताया देखो कि आ तो भगवान नो अलौकिक मार्ग छे भाई, समय सार कलश बसो में आवे छे के परद्रव्य ने आत्मा ने कायपन संबंध नहीं। तो कर्ता कर्म संबंध कई रीते होए? हवे आई कहे छे के वाच नो संबंध छे, ए व्यवहार थी छे। दो भिन्न भिन्न द्रव्यों का एक दूसरे से संबंध बताना यह व्यवहार का कथन है, यह व्यवहार ने से किया गया कथन है। हवे आई कहे छे के वाचक वाचनो संबंध छे, ए व्यवहार थी छे, एटले के ग्रंथना शब्दों अने शुद्धात्मा ने वाचक वाच्य संबंध कहो, ते निमित्त नैमित्तिक संबंध छे अने ते व्यवहार छे, निश्चय थी कोई संबंध नहीं। पहले हाथों पाड़ ऐसा कहते हैं, ऐसा वस्तु का जो स्वरूप है वैसा हाथों पाड़, यानी ऐसा कम से कम उसमें हाथों मिला, हा में हाथों मिला, ख्याल में? हाथों अनादि परमागम।
देखो यहाँ वाचक शब्द और वाच्य है, आत्मा का जिसको ज्ञान होगा उसके लिए वो वाचक वाच्य तो
वहाँ से तो हम शब्द ज्ञान करते हैं और शब्द रखते हैं, तो क्या हमें आत्मा का ज्ञान हुआ? तो वो शब्द तभी तक वाचक नहीं हुए। तो वाचक शब्द वाले कहे लो जी आत्मा तेनु ज्ञान था, तेने से ज्ञान ही पड़े आगे ले जाने, उसने उसको दिए बनाए। जैसे आपको एक लेटर आ गया कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, क्या होगा? चलाएगा ना अंदर, अरे 1 करोड़ मिल रहे। और यहाँ कहते हैं आप ये आत्मा क्या है, अनंत गुणों का फिट है, आत्मा है ना वो, यानी वहाँ ऐसा अंदर से उत्साह नहीं आता है। आत्मा की बात सुनते तो आत्मा नाम का कोई थर्ड पार्टी है और उसमें ऐसे ऐसा होता है ऐसा लगता है। और किसी ने कहा आप बहुत दुखले हो गए पहले, हाँ बहुत उसमें आत्मा की बात नहीं, यानी वो भी शरीर में कितना अपना आत्मा पण वो उसको हमने आत्मा माना है ना? तो एक खरेखर हमको आत्मा की बात ध्यान में आती है क्या? तो हमें आत्मा में आत्मापन है कि शरीर में आत्मापन पड़ा है? बात वो वाचक शब्द जो है, बताने वाले जो शब्द है, उसके द्वारा आत्मा को जाने के लिए आत्मा संबंधी इसमें ज्ञान करता है। आत्मा संबंधी ज्ञान, ये आत्मा का ज्ञान नहीं है। इन शब्दों के द्वारा हम अपने आप को जानेंगे तब वो आत्मा का ज्ञान होगा। तो तब उसमें कहेंगे ये वाचक वाच्य संबंध है, वो भी व्यवहार से कहेंगे। शब्दों ने बताया इसलिए हमने आत्मा को जाना, इसी नहीं बात वो तो जब जाना तब कहेंगे ये तो ये व्यवहार ज्ञान है, परंतु वो संबंध भी कब, जब आत्मा को जानेंगे तब, नहीं तो वो संबंध नहीं है। जैसे अपने वो ट्रांसलेशन किया था ना जैन मधुर दक्षिणा के, तो उन्होंने बताया कि अभी तो मुझे ये शब्द का ज्ञान हुआ है, और शब्द को ज्ञान होते ही मुझे बहुत ऐसा अंदर से अवभाव प्रकट हुआ है, जो वितराग शब्द आता है, अन्य अन्य बातें आती है आत्मा की, तो मुझे बहुत प्रसन्नता आती है। तो अभी शब्द ज्ञान हुआ है, मुझे आत्मज्ञान कब हुआ? मैंने जो कोई अन्य व्यक्ति भी है, जैन भी है, उसको भी इतना अहोभाव आता है कि आत्मा की बात ऐसी है, तो आत्मा का ज्ञान कैसा हुआ? तब उसको कहेंगे हम वाच्य वाचक संबंध उसमें आ गया।
ये बात कि हमने कल वाच्यता की थी कि कारण परमात्मा तो सभी है, लेकिन वो सच रूप में कारण परमात्मा कब कहे जाएंगे? तो जब कार्य परमात्मा बनेंगे, यानी क्या, जो पर्याय में जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा प्रकट होना, तो यहाँ प्रकट होना यह कार्य हुआ, उसका कारण कौन? तो कहते वह जो त्रिकाली शुद्ध स्वभाव जो है वह कारण परमात्मा। कारण परमात्मा कब कहेंगे? कि जब यहाँ कार्य होगा। कल हमने देखा था ना कि बाप कब पैदा होगा? कि जब बच्चा पैदा होगा। कल नहीं आई थी आप? हाँ, फिर हाँ, यानी यहाँ कार्य हुआ तो वहां कारण आरोप आएगा। ख्याल में वैसे यहाँ बता रहे हैं कि वाच्य जो है वह जब ख्याल में आएगा तब यह शब्द वाचक है, इसको सही अर्थ रूप से वाचक कहने में आएगा। बराबर। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अवे आई कहे छे के वाचक वाचनो संबंध छे, ये तो हो गया यहाँ तक। हाँ जी, नीचे नीचे नीचे, हाँ चौथी लाइन। अच्छा, स्टार्टिंग आ तो अनादि परमागम शब्द ब्रह्मत्या ने भगवान केवड़ीनी वाणी थी प्रमाणित वाच छे। ये बात को भी हमने देखा था कि यह जो परमागम यानी यहाँ जो शास्त्र जो हमें उपलब्ध है वो कैसा है, शब्द ब्रह्म थी, यानी जो आत्मा के संबंध में कहने वाली जो वाणी है उससे, और भगवान केवड़ीनी वाणी थी प्रमाणित छे, यानी जिनेन्द्र भगवान ने जो बात बताई है उसी बात का यहाँ हमें पूरा मतलब इन्फॉर्मेशन मिल रही। भाई आगम अनादि छे, आगम यानी जो द्रव्य श्रुत जो है, यानी जिनेन्द्र भगवान की वाणी कब नहीं खिरेगी? ये हमने बात देखी थी ना कि आज यहाँ भरत क्षेत्र में अभी तीर्थंकर की उपस्थिति नहीं है, लेकिन विदेह क्षेत्र में तो तीर्थंकर है ही है। वहां विदेह क्षेत्र में तो ऐसी विशेषता है कि कभी भी वहां सर्वज्ञ की विद्यमानता न हो ऐसा नहीं होता है, हमेशा वहां विद्यमान है ही है। कम से कम ऐसा हम जरूर कह सकते हैं इस विश्व में 20 तीर्थंकर की तो हाजिरी होती ही होती है। अभी मैं पूछूंगा वही जवाब देगा, तो एक समय में यानी एक काल में राधर, एक समय कहो या एक पीरियड में राधर, अधिक से अधिक तीर्थंकर कितने हो सकते हैं आप जानते हैं बेटा? 177। अच्छा वीरेश भाई, आप कितना कहेंगे? मम्मी की तरफ मत देखना, वो वहां से इशारा करती है, मुझे मालूम है। आप नहीं जानते? सौभाग मल तो जानेंगे, 172। अच्छा कोई बात नहीं, और नीचे नीचे आए। हाँ अभी और लीलाम चल रहे हैं ना अपना। 177, 172। बहन आप कितना कहेंगी? 170। हाँ, कोई बात नहीं, हमने ग्रेस दे दिया साथ। ये क्या है कि सिर्फ यही यही पढ़ेंगे ना हम तो थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो जरा थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन भी मिले। तो ये क्या कहने, एक समय में 170 तीर्थंकर है, और मिनिमम तो 20 होंगे ही होंगे त्रिकाल। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? अब वो 170 कैसे होंगे वो बात तो बाद में कभी बताएंगे। आपको मालूम है ना राजेश? देखो देखो, हमेशा ये विदेह क्षेत्र जो होते हैं ना, एक पर्वत के मतलब मेरु पर्वत की अपेक्षा से 32 विदेह क्षेत्र होते हैं, यानी ऊपर 8 पूर्व और पश्चिम, उसमें उत्तर और दक्षिण में 8, 8, 16 और इधर के 8 और 16, 16 दूनी 32। तो ये एक एक विदेह क्षेत्र अपने भरत क्षेत्र से 32 गुना बड़ा है, भरत क्षेत्र से, भारत से नहीं। तो वहां एक तीर्थंकर ऐसा, एक साथ तीर्थंकर होंगे तो 32 होंगे, और ऐसे 5 विदेह क्षेत्र है, 5 मेरु है ना हमारे पास, हाँ जी, 5 मेरु है, तो सबके 32 32 गिन के कितने हो गए, 160, ये 160। और 5 भरत क्षेत्र है और 5 ऐरावत क्षेत्र है, तो इनके एक समय में एक ही होते हैं, तो ऐसे 5 और 5 10 और 160, ऐसे 170 तीर्थंकर एक साथ विराजमान हो सकते हैं, कहाँ, ये विश्व में। अभी ऐसा कब हुआ था, हाँ मिलिंद बताएगा, हाँ आपने जो, हाँ बावीस, अच्छा दूसरे, तो अजीतनाथ भगवान जब हमारे यहाँ दूसरे तीर्थंकर हुए थे, उस काल में ये 170 तीर्थंकर विद्यमान थे। ये हमेशा इन गुणस्थानों में कोई ना कोई जीव त्रिकाल रहेगा। देखो हर आगम मतलब कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग और सर्वे अनुयोगों के द्वारा ये बात सिद्ध होती है, ख्याल में। तो ये 13वां गुणस्थान हमेशा विद्यमान होगा, इसका अर्थ क्या, सर्वज्ञ की उपस्थिति है, ख्याल में। अब हम तो हमारे खाली बंबई में देखते हैं कि यहाँ तो कोई हमको छठे सातवें गुणस्थान वर्ती नहीं दिखता है। अरे पर बंबई थोड़ी भारत है, तो भारत में तो कहीं हमें दिखाई नहीं दिया। अरे भरत क्षेत्र की बात चल रही है, पंचम काल के अंत तक मुनि होंगे, श्रावक होंगे वगैरह वगैरह, इस तरह। लेकिन हमें क्या है कि हमको दिखाई नहीं देता है, तो हम कैसा मानेंगे। अभी हम अन्य गांव में गए तो वहीं का हमें पता ही नहीं क्या है और क्या नहीं, तो हम कैसा बता पाएंगे कि आप पूरे विश्व में है क्या नहीं। अब आगे यहां तो ये बात चल रही है, जो आगम है वो अनादि परमागम है, यानी यह परमागम किसको कहा कि शब्द ब्रह्म थी, यानी भगवान केवड़ी नहीं मानी थी परमात्मा, कहां तक आए थे हम, हाँ ये जो परमागम जिसको कहा गया है, तो ये आगम यानी ये श्रुत रचना जो हुई है या जिनवाणी है उसको यहाँ परमागम कहने में आ रहा है। तो ये शब्द ब्रह्म जो है और उसको भी भगवान ने केवड़ी नहीं वाणी थी प्रमाणित वाच्य भाई, हाँ यहाँ आए थे आगम अनादि छे, हाँ तो एक आई नमू नथी, ये परमागम ना शब्दों नी शैली अनादि छे, कहू छे ने के सिद्धो वर्ण समामनाय आ वाणी नी कोई रचना करे छे एम नथी, वाणी मा पुद्गल नी पर्याय नी रचना अनादि छे। यानी क्या कहना चाहते हैं, जैसे जीव भी अनादि है, तीर्थंकर भी अनादि से है, वैसे पुद्गल वर्गणा भी अनादि से है, उसमें भाषा वर्गणा भी अनादि से है, और वह भाषा वर्गणा से शब्द रूप परिणत होना भी अनादि से है। तो अभी तेरा क्या रहा, कुछ नहीं, क्यों, ये वाणी भी अनादि सी है, तो थोड़ी तेरे निकारण निकल रही है, समझ में आया। भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर नी वाणी जे छे, ए वाणी नी रचना तो वाणी ना कारणे छे, यहाँ बताया था मैं हमको पर्याय पर्याय नी छे, ये यहाँ बता दे, वाणी का जो परिणमन हो रहा है वह वाणी ना कारणे छे, केवड़ी ए वाणी नी रचना नथी करी, दिव्य ध्वनि नी रचना कई इमा केवड़ी निमित्त छे, तेथी निमित्त थी एम कहू के केवड़ी नू कहेलू छे, आवो निमित्त नैमित्तिक संबंध ए व्यवहार छे। तो कहेंगे कि भाई ये जिनेन्द्र भगवान ने तो कहा हुआ है नहीं, ये तो पुद्गल की रचना है, अभी तो आपने बताया अच्छे मिले, तो ये पुद्गल तो पुद्गल की रचना ये प्रमाणित कैसे मान सकेंगे हम? अभी तक तो कहते थे सर्वज्ञ ने कहा, सर्वज्ञ ने कहा, और अभी तुम कह रहे हो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार के ले रहे हो कि जिनेंद्र भगवान की वाणी है ऐसा कहने में आता है, वास्तव में तो वो पुद्गल की रचना है। तो भाषा और गणाकार है, कैसे पंजे में आए हमारे छपड़े। तो कहते हैं वह तो सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि ऐसा उत्कृष्ट जीव जब परिपक्व हुआ है तब उसके निमित्त से ऐसी उच्चतम वाणी ही निकलेगी कि जैसा वस्तु का स्वरूप है, और वह वस्तु का स्वरूप है ऐसी ही वाणी खिरी है, इसलिए निमित्त रूप से वो जिनेंद्र भगवान की वाणी ऐसा कहने में आता है। ऐसा देखो कि ये जो है अभी ये तो यहाँ तो हमें दिखाई देता है पुद्गल है, क्योंकि दिखाई देता है वो सारा पुद्गल है, और अगर जिनवाणी में ऐसा बात आवे कि ये जीव है, जीव दिखाई देता है, तो वो जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं हो सकती। ये उदाहरण दे रहा हूं, यानी जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही वो वाणी में आया हुआ है, और वो उनके निमित्त से खिरती है, तुम्हारे हमारे निमित्त से तो कोई दिव्य ध्वनि खिरती नहीं है, ख्याल में आए, इसलिए वो प्रमाणित है ऐसा शास्त्र में लिखा है। अब आगे, हाँ, वाणी मां पुद्गल निवेद हो गया ना, कहां तक आए थे, अरे क्या होता है, चलो वाणी मां थर्ड फोर्थ लाइन, पुद्गल ने पर्याय नी रचना अनादि छे, भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर नी वाणी छे, जे छे ए वाणी नी रचना तो वाणी ना कारणे छे, केवड़ी ए वाणी नी रचना नथी करी, दिव्य ध्वनि नी रचना थई एमा केवड़ी निमित्त छे, लिखा ना, तेथी निमित्त थी एम कहू के केवड़ी नु कहेलू छे, आवो निमित्त नैमित्तिक संबंध ए व्यवहार छे, व्यवहार छे ने व्यवहार ने नु कथन छे, तीर्थंकरो श्रुतथी उपदेश आपे छे एवो धवलमा पाठ छे, भगवान श्रुत ज्ञानथी कहे छे, भगवाननी वाणी एटले दिव्य ध्वनि छे ते श्रुत ज्ञानथी कहे छे, केम के सांभळनारने तेना निमित्ते श्रुत ज्ञान थाय छे, तेथी श्रुत ज्ञानथी कहे छे एम केवामा आयमू छे, है तो केवल ज्ञान लेकिन वो जो बात बता रहे हैं वो तो निरक्षरी दिव्य ध्वनि है, एकाक्षरी जिसको हम कहेंगे, ओम रूप से ध्वनि कीर्ति है, और जब वह आवाज वहां के श्रोताओं के कान तक आ जाता है तो वह भाषा रूप परिणमित होता है, तो वो किसके ज्ञान में आता है, तो श्रुत ज्ञानी के ज्ञान में आता है, क्योंकि सुनने वाले तो कोई सर्वज्ञ होंगे नहीं, ख्याल में, तो श्रुत ज्ञानी जानते हैं इसलिए कहते हैं वह श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से कह रहे हैं, वो ऐसा मत समझना कि उनको श्रुत ज्ञान भी है करके, क्या उनको श्रुत ज्ञान हो सकता है, हाँ क्यों नहीं, हाँ वो बराबर है, पर श्रुत ज्ञान क्यों नहीं, हाँ हाँ इनका ऐसा कहना है कि केवल ज्ञान होता है तो उसमें पांचों ही ज्ञान समा जाते हैं, ऐसा आपका कहना है ना, क्या ये बात सही है डॉक्टर, नहीं बोलो, बराबर वो भी यही कह रही हैं, क्यों लेकिन आप बताना चाहते हैं, बोलो बोलो, हाँ देखो इनका कहना है, धीमे सी आवाज है ना, मैं बता कि केवल ज्ञान जो होगा वह पूर्ण ज्ञानावरण कर्म का अभाव करके जो पैदा होता है इसके क्षायिक ज्ञान भी कहते हैं, यानी वहां कोई ज्ञानावरणीय कर्म वहां मौजूद ही नहीं है, इस समय जो ज्ञान की पर्याय होगी वह तो केवल ज्ञान रूप से जानी जाएगी। अब उसमें हम श्रुत ज्ञान भी है ऐसा अगर हम मानते हैं बहन, तो उसमें क्या गड़बड़ी होगी, श्रुत ज्ञान तो क्षयक्षमिक ज्ञान है, तो यानी अभी उसके थोड़ा कर्म बाकी है, ऐसा नहीं है, देखो हम थोड़ी सी चौकसाई अधिक करेंगे तो ये बातों का थोड़ा सा अधिक खुलासा होगा, बुरा नहीं मानना हो, हाँ हाँ क्या है कि यहाँ पर ये बताया, आपका कहना बराबर है कि उस ज्ञान में सारे ज्ञान आ जाते हैं, ये कहना बात अलग है, लेकिन उसका हमें विश्लेषण भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि अरे श्रुत ज्ञान तो इतना है, जो इतने को जानता है वो इतने को नहीं जानेगा क्या, ऐसा इस अपेक्षा से। लेकिन यहाँ श्रुत ज्ञान क्यों कहा गया है कि जैसा हम देखते हैं कि ये राग द्वेष हो रहे किसी को, तो ये राग द्वेष किसके हैं? तो कहे कि ये जीव के स्वभाव में तो है नहीं, तो फिर हो तो रहे, तो कहे वो पुद्गल के हैं। क्यों साहब? अरे पुद्गल को देख देख के इसको राग हो रहे ना, इसलिए वो पुद्गल के खाते में डाल दो। तो यहाँ सुनने वाले कौन है? श्रुत ज्ञानी है। तो श्रुत ज्ञानी जान रहे हैं तो ये श्रुत ज्ञान की भाषा में बोले, तो बोल तो रहे केवल ज्ञान, मतलब ज्ञान तो उनका केवल ज्ञान है, बोल रहे तो दिव्य ध्वनि में, और वह भाषा रूप परिणमेगी तो श्रुत ज्ञान रूप हो जाएगी। इसलिए यहाँ क्या कहा? श्रुत ज्ञान थी कहे छे एम केवामा आयु छे, है तो नहीं पर केवामा आयु छे, भगवान ने श्रुत ज्ञान छे एम नहीं। अभी अच्छा हो गया ये लिखा है भगवान ने तो केवल ज्ञान छे, आशय वो छे के सांभरनार ने भाव श्रुत ज्ञान थाय छे, भले थाय छे पोता थी पन वाणी निमित्त छे। ये भाव श्रुत ज्ञान यानी के समझ में आया राजेश? भाव श्रुत ज्ञान यानी आत्मा का अनुभव। ये जीव 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 की जो पर्याय है, द्रव्य श्रुत यानी ये जो शास्त्र आगम रचना है उसे द्रव्य श्रुत कहेंगे। भाव श्रुत यानी अपने स्वभाव अपना स्वरूप, जो शास्त्र में आत्मा की बात कही गई है उस आत्मा को जानना, यह भाव श्रुत ज्ञान। और सिर्फ शास्त्र शास्त्र को जानना यह द्रव्य श्रुत ज्ञान। अब हमने परसों ही देखा था, कल देखा था या परसों, श्रुत केवली किसको कहना? तो 12 अंग का ज्ञान तो जिसको होवे, लेकिन उसमें मूल पहली कंडीशन कौन सी है? अपने आत्मा का अनुभव चाहिए, स्वरूप का अनुभव होना चाहिए। वो होगा तो उसको, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा था कि 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी भी हो तो वह भी मिथ्या ज्ञानी रह सकता है, रह सकता है। सभी 11 अंग और 9 पूर्व वाले मिथ्यात्वी है ऐसा नहीं, ख्याल में आया? तो यहां बता रहे हैं कि वो जो आत्मानुभवी होगा और उसके एक अंग का भी ज्ञान नहीं होगा तब भी वो मोक्ष पाएगा, ख्याल में? तो इसलिए यहां समझा रहे हैं भाव श्रुति यानी आत्मानुभव, और द्रव्य श्रुति यानी जो हम शास्त्र का जो नॉलेज यानी ज्ञान होता है उसे। भाव श्रुति ज्ञान से भले थाय छे पोता। अभी यहां क्या बता रहे हैं? सांभरनार ने भाव श्रुत ज्ञान थाय छे भले थाय छे पोता थी, यानी यह दिव्य ध्वनि सुनी इसलिए उसे आत्मानुभव हुआ, ऐसा नहीं। आत्मानुभव होगा तो अपने से, लेकिन उसमें निमित्त पन वाणी निमित्त छे, एथी ए पन श्रुत केवामा आवी छे। अनादि परमागम छे तेने द्रव्य श्रुत कहे छे। क्या बात है, मैं जो बात बोलता हूँ आगे आती आती है, यानी मैं इतना ही ठीक बोल रहा हूँ, कोई हरकत नहीं है। गणधरो सूत्र ने रचना करे छे, सूत्र यानी शास्त्र, तथा भव्य जीवों ने श्रुत ज्ञान प्रकट थाय छे, तेमा केवड़ी नी वाणी दिव्य ध्वनि निमित्त छे, तेथी ते वाणी ने पन श्रुत केवामा आवी छे। शुद्ध आत्मा नी प्राप्ति थवी ते प्रयोजन छे। अभी यहाँ पर बताया था ना, अभी दी वगैरह वगैरह बातें बताई थी, अभी वो आगे की बात बता रहे। प्रयोजन एटले जे शुद्ध ध्रुव आत्मा छे तेनो पर्याय में अनुभव थाय ए प्रयोजन छे। यानी अपना जो त्रिकाली शुद्ध ध्रुव यानी कायम रहने वाला ऐसा जो आत्मा है उसका जो अनुभव है यही तो प्रयोजन है। वस्तु पोते जे छे जीवती ज्योत तेने ज्ञान मां, जीवती ज्योत का अर्थ जो सतत विद्यमान है उसको यहां जीवती ज्योत कहा। तेने ज्ञान मां कबूलवी यानी एक्सेप्ट करवी ए प्रयोजन छे। जेवो आत्मा छे एवो कबूलियो त्यारे जीवती ज्योत ने जीवती राखी के आवो हूं शुद्ध ध्रुव चैतन्य ज्योति छू। आत्माना स्वरूप ने आ सिवाय बीजी रीते माने एने शुद्ध आत्मानु मान्यता मां मृत्यु करियूं छे। क्या कहते हैं? इसके अलावा अगर आत्मा को कोई अन्य रूप से मान रहा है तो उसने क्या किया? अपने ही श्रद्धा में अपने ही शुद्ध आत्मा का हत्या कर दी, उसने मृत्यु करी जे, यानी उसने अपने को जाना ही नहीं ना। तेथी वस्तुनु स्वरूप जेवू छे तेवु यथार्थ मानवु अने अनुभववु ते वास्तविक प्रयोजन छे। अभी जीव जीव अधिकार की ये गाथा चालू होती है, आप बोलेंगे जीवो चरित चरितदंसन नाणिदो तम हि स समय जान पोगल कम पदे सदेदम तम जनान समय जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्वस स्वयनिश्चय जानवो सित कर्म पुजगलना प्रदेशे पर समय जीव जानवो जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्वसमय निश्चय जानवो सित कर्म पुजगलना प्रदेशे पर समय जीव जानवो। देखो यहाँ पर ये मूल बात मैं बताऊंगा, यहाँ क्या लिखते हैं वो पहले उसका हेडिंग देखेंगे। प्रथम गाथा मां समय प्राभूत केवानी प्रतिज्ञा करी, त्या ए आकांक्षा थाय छे के समय एटले शुं, तेथी हवे पहला समय ने ज कहे छे। यानी पहले तो बताया कि भाई मैं यहां आपको इस समय सार में समय के बारे में बताना चाहता हूं, मैं बताऊंगा। तो पहले ऐसी मन में वो शंका उठती है और उसमें ऐसा लगता है कि भई ये समय जो है वो क्या है, समय का अर्थ क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ उन्होंने समय को दो विभागों में बांट दिया, विभाजित किया। एक को कहते हैं स्व समय और दूसरे को कहते हैं पर समय। तो ये स्व समय और पर समय क्या है यह हम अभी देखेंगे। इसमें उनको किसको स्व समय कहना है और किसको पर समय कहना है। देखो अगर हम सिर्फ गुजराती पढ़ेंगे तो बहुत सी बातें हमारे ख्याल में आएगी। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित, यानी जो जीव सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में स्थित है, यानी जिन्होंने अपने आत्मा का अनुभव किया है, वह निश्चय से स्व समय जानना जानवो जान सकते हो आप, जानना चाहिए। और स्थित कर्म पुद्गल ना प्रदेशे, यानि जो कर्म पुद्गल जो है उसके उदय में जो स्थित है उसमें जो अटका हुआ है, यानि इसमें शरीर में कहो इसमें कहो सब में ले लेना, ऐसे पुद्गल कर्म यानि कर्म और पुद्गलों के प्रदेशों में जो स्थित है ऐसा जीव पर समय जानना, यानि एक अपेक्षा से जो सम्यक दृष्टि है इसको स्व समय कहा गया है और जो मिथ्या दृष्टि है उसको पर समय कहा गया है। अभी इससे भी और अधिक डिटेल में बात आगे आएगी। देखो गाथा तो कहते हैं, हम गुजराती पढ़ते क्योंकि यहाँ संस्कृत की स्क्रिप्ट नहीं दी हुई है। हे भव्य जे जीव दर्शन ज्ञान चारित्रमा स्थित थई रह्यो छे तेने निश्चय थी स्व समय जान, अने जे जीव पुद्गल कर्मना प्रदेशों मा स्थित तहेल छे तेने पर समय जान। अभी पुद्गल कर्मना प्रदेशों मा स्थित छे यानी क्या, देखो प्रत्येक द्रव्य जो है उसके अपने अपने स्वयं के प्रदेश है। अभी मैं असंख्यात प्रदेशी हूँ ऐसे स्व को न जानते हुए, अरे क्या करे साहब, पुद्गल हमको तकलीफ देता है, पुद्गल हमको रुलाता है, पुद्गल हमको बहुत, अभी तो हमारा ऐसा खोटा टाइम चल रहा है, क्या करें हम, अभी असाधा वेदनीय कर्म चल रहा है हमारा ऐसा, यानी हम कर्मों के ही प्रदेशों में स्थित है, यानी उसी के बारे में बारंबार हम सोचते हैं, उसी में हम अफेक्टेड है, उसी से हम तकलीफ में आए हैं। तो उसी के कारण हमारी बारंबार परिणति कहाँ जाती है, तो कहते कर्म की तरफ, यानी मैं स्वयं को छोड़कर अन्य की तरफ इसका अधिक उपयोग चल रहा है। तो जैसा हमारा बहुत पुण्य का उदय आया तो हम तो पैसे में ऐसे रचे पचे हो गए कि फिर हमें अपने स्वभाव की, अपने स्वरूप की पहचान ही नहीं हो रही है, उधर हमारा उपयोग ही नहीं जा रहा है। तो वह अब यहाँ तो उसका समझो साता का उदय आया है, तो वह उसी में अटका हुआ है। तो कहते वह पर समय है, पद क्या कहा, कर्म पुद्गल ना प्रदेश है, प्रदेश है ना, उसी में वो रचा पचा है जैसा कहेंगे। अब कहते समय शब्द नो अर्थ आ प्रमाणे छे, टीका पढ़ रहे अभी हम, सम तो उपसर्ग छे तेनो अर्थ एक पणु एवो छे, अने अय गतव धातु छे एनो गमन अर्थ पन छे अने ज्ञान अर्थ पन छे, यानी अय का दो प्रकार से अर्थ किया है, एक जो गमन करता है और जो ज्ञान है। देखो तो एक ही साथे तेथी एक साथे जो युगपत जानवू तथा परिणमन करवू ए बे क्रियाओ जे एकत्व पूर्वक करे छे ते समय छे। अभी इस अपेक्षा से यहाँ जीव द्रव्य को ही समय कहने में आया है, क्योंकि उन्होंने अर्थ क्या किया, गमन यानी जो क्रिया करता है, ये गमन यानी यहाँ से वहां जाता है उसको गमन नहीं कहा, जो परिणमनशील है, और दूसरा क्या है, जानता है। तो जानने का गुणधर्म जो है, ये जानने का जिसका स्वभाव है, ऐसा कौन सा द्रव्य होगा, अपना क्या नाम प्रभाबेन, जानने का कार्य कौन सा द्रव्य करता है, हाँ जीव द्रव्य करता है। तो यहाँ उसको ही रिफर कर रहे, क्या कहा देखो, एक साथे जो युगपद, युगपद का अर्थ एक साथे, जानवू तथा परिणमन करवू ए बे क्रियाओ जे एकत्व पूर्वक करे छे ते समय छे। आ जीव नाम नो पदार्थ एकत्व पूर्वक एकज वक्ते परिणमे पन छे अने जाने पन छे तेथी ते समय छे। यानी यहाँ जीव द्रव्य को ही समय कहा गया है। आ जीव पदार्थ केवो छे, तो सदाय परिणाम स्वरूप स्वभाव में रहेलो होवा थी, यानी उसका स्वभाव कैसा है, परिणमन करना, तो स्वभाव अगर उसका परिणमनशीलता है तो उसका परिणमन कब रुकेगा, हाँ सिद्ध में, सिद्ध अवस्था में, अभी तो उसने सब काम कर लिया ना, कृतकृत्य हो गए अभी वो तो, तो उनका परिणमन होगा कि नहीं, क्या कहते आप, मौन है आज उत्तर दो ना, हाँ तो यहाँ सिद्ध अवस्था हो या कई भी अवस्था, निगोद में भी क्यों न हो, वहां तो उसका परिणमन होगा, क्योंकि वो तो उसका स्वभाव है, बराबर बताया आपने। तो कहते हैं सदाय परिणाम स्वरूप स्वभाव रहेलो हुआ थी, उत्पाद वे द्रव्यनी एकता रूप अनुभूति जनु लक्षण छे एवी सत्ता थी सहित छे। यहाँ जीव पदार्थ का यहाँ वर्णन चल रहा है, तो जीव पदार्थ कैसा है, किसको जीव कहना, तो कह रहे हैं स्वयं तो परिणमन स्वरूप है, और क्या कहते हैं, उत्पाद वे द्रव्यनी एकता रूप अनुभूति, यानी जो सत स्वरूप है, ऐसा जो सत स्वरूप, उसमें सत की बात तीन तरीके से बताई ना, उत्पाद वे ध्रुव की एकता रूप जो अनुभूति, यानी जो अपने जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा अनुभव कर रहा है, अनुभूति जेनु लक्षण छे एवी सत्ता थी सहित छे। आ विशेषण थी जीवनी सत्ता नहीं माननार नास्तिकवादियों नो मत खंडित थयो, तथा पुरुष ने, पुरुष यानी यहाँ अर्थ तो जीव समझना हो, ये पुरुष स्त्री ऐसी बात नहीं ली है, पुरुष का अर्थ आत्मा जीव, तथा पुरुष ने अपरिणामी माननार सांख्यवादियों नो व्यवच्छेद परिणमन स्वभाव केवा थी थ्यो। अभी यहां दो बातें बताई ना उन्होंने, क्या बताया कि उत्पाद वे ध्रुव रूप जिनकी सत्ता है उसके सहित है ना वो, तो इसका अर्थ ये हो गया कि वो सत्ता सहित है। तो कई लोग तो ऐसे मानते हैं कि जीव की सत्ता ही नहीं है, तो ऐसे जो नास्तिकवादी है इनके मत का खंडन हो गया। और कई लोग ऐसे हैं कि जिनको हम सांख्यवादी कह सकते हैं, तो सांख्यवादी उनके मानना क्या है कि वह अपरिणामी है, वह परिणमन करता ही नहीं है। कौन? जीव। तो यहाँ वह परिणमन स्वभाव वाला है, यह बात बताते हुए उनका भी यहाँ मत का खंडन किया है। अभी जो नैयायिक है और जो वैशेषिक है उनकी बात हम अभी है दो मिनट। अच्छा, तो नैयायिको अने वैशेषिको सत्ता ने नित्य ज माने छे। एक तो अपरिणमनशील मानता है और एक कहते हैं कि वो नित्य यानी परिणमनशीलता है ही नहीं। अने बौद्धो सत्ता ने क्षणिक ज माने छे, तेमनु निराकरण सत्ता ने उत्पाद वे द्रव्य रूप केवाती थयू। अभी ये एक ही उसको उत्पाद वे ध्रुवता से युक्त ऐसे सत्ता वाला कहने से, जो उनको देखो नित्य ही मानने वाले हैं उनका भी निराकरण हो गया, और जो क्षणिक मानते हैं उनका भी निराकरण हो गया। क्षणिक मानने वाले बौद्ध मतवादी है और जो नित्य मानने वाले नैयायिक और वैशेषिक है, तो इन दोनों का यहाँ खंडन हो गया। देखो यहाँ लिखते तो अपने आत्मा के स्वभाव के बारे में, स्वरूप के बारे में, लेकिन वह बताते बताते अन्य मतियों का खंडन सहज रूप से होता है। उसमें से अर्थ निकालने का जो कोई हमारे में ताकत होवे तो ही हम इसमें से अर्थ निकाल पाते हैं। अभी तो बात ऐसे है ना कि एक बात कहने से अनेक बातें उसमें से फलित होती है। इस तरह से यह जो कुंदकुंद आचार्य की जो बात है उस पर से हम आगे भी और देखेंगे। इसी तरह स्वमत का मंडन और परमत का खंडन सहज रूप से होता है, वो बात चलेगी। अभी चावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकणमो सदा देत हो।